नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। मिशेल कॉनरेड की पुस्तक CCNA द अल्टीमेट बिगिनर्स गाइड, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट फॉर बिगिनर्स, नेटवर्किंग प्रमाणन की तैयारी के लिए लिखी गई आरंभिक स्तर की मार्गदर्शिका के रूप में प्रस्तुत होती है। इसका विषय सिस्को CCNA से जुड़ी मूल नेटवर्किंग समझ है, न कि किसी एक वास्तविक नेटवर्क का गहन तकनीकी संदर्भ ग्रंथ। शीर्षक और उपलब्ध परिचयात्मक जानकारी के आधार पर इसका उद्देश्य नए विद्यार्थियों को नेटवर्क कैसे काम करता है, उपकरणों की भूमिकाएं क्या हैं और प्रमाणन उन्मुख अध्ययन किन क्षेत्रों में केंद्रित होता है, इसका सरल प्रवेश बिंदु देना है। CCNA के सामान्य दायरे में नेटवर्क एक्सेस, IP कनेक्टिविटी, IP सेवाएं, सुरक्षा की बुनियाद तथा ऑटोमेशन और प्रोग्रामेबिलिटी शामिल होते हैं। इसलिए पुस्तक को पढ़ते समय इसे अवधारणाओं का प्रारंभिक नक्शा समझना अधिक उचित है। विस्तृत विषय सूची या स्वतंत्र समीक्षाओं की सीमित उपलब्धता के कारण इसके विशिष्ट अध्यायों, लैबों या परीक्षा रणनीति के बारे में निश्चित दावे नहीं किए जा सकते। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, नेटवर्क की बुनियाद को उपकरणों और परतों के संबंध से समझना शुरुआती CCNA अध्ययन का पहला आवश्यक विषय नेटवर्क के घटकों का कार्यात्मक संबंध है। किसी नेटवर्क में एंड डिवाइस, स्विच, राउटर, वायरलेस उपकरण और सर्वर अलग अलग काम करते हैं, लेकिन उपयोगकर्ता के लिए वे एक ही संचार अनुभव बनाते हैं। आरंभिक मार्गदर्शिका का उपयोग इस अंतर को स्पष्ट करने में होता है कि स्विच आमतौर पर स्थानीय नेटवर्क के उपकरणों के बीच फ्रेम आगे बढ़ाता है, जबकि राउटर अलग नेटवर्कों के बीच IP पैकेट का रास्ता चुनता है। यह भेद केवल परिभाषा नहीं है, क्योंकि इसी से समस्या पहचानने की दिशा तय होती है। उदाहरण के लिए, एक ही लोकल नेटवर्क के दो उपकरण संवाद न कर पाए तो स्विचिंग, केबल, VLAN या एड्रेसिंग देखी जाएगी। अलग नेटवर्कों के बीच पहुंच विफल हो तो गेटवे और रूटिंग की जांच अधिक प्रासंगिक होगी। OSI और TCP/IP जैसे परत आधारित मॉडल भी इसी सोच को व्यवस्थित करते हैं। वे यह बताते हैं कि डेटा एप्लीकेशन से नीचे नेटवर्क माध्यम तक कैसे जाता है और दूसरी ओर फिर कैसे पढ़ा जाता है। नए पाठक के लिए इन मॉडलों को याद करने की सूची नहीं, बल्कि संचार विफलता को अलग अलग स्तरों पर बांटने की विधि मानना उपयोगी है। ऐसी बुनियाद आगे के IP, स्विचिंग, सुरक्षा और वायरलेस विषयों को एक दूसरे से जोड़ती है। दूसरा, IP एड्रेसिंग और सबनेटिंग को नेटवर्क डिजाइन की व्यावहारिक भाषा मानना CCNA स्तर पर IPv4 एड्रेसिंग और सबनेटिंग केंद्रीय कौशल है,
क्योंकि कोई भी राउटर या होस्ट सही पते, मास्क और डिफॉल्ट गेटवे के बिना अपेक्षित ढंग से संवाद नहीं कर सकता। शुरुआती पाठक अक्सर IP पते को केवल एक संख्या समझते हैं, जबकि उसका नेटवर्क भाग यह बताता है कि उपकरण किस तार्किक समूह में है और होस्ट भाग किसी विशेष उपकरण की पहचान करता है। सबनेट मास्क इस सीमा को निर्धारित करता है। इसी कारण दो समान दिखने वाले पते अलग मास्क के साथ एक ही सबनेट में हो या न हो, इसका उत्तर बदल सकता है। सबनेटिंग का व्यावहारिक उद्देश्य पते बचाना, प्रसारण क्षेत्र सीमित करना और विभागों या शाखाओं के लिए स्पष्ट नेटवर्क सीमाएं बनाना है। एक छोटे कार्यालय में प्रशासन, अतिथि वायरलेस और सर्वर को अलग सबनेट देने से ट्रैफिक नियंत्रण तथा सुरक्षा नीतियां बेहतर ढंग से लागू की जा सकती हैं। इस विषय में केवल गणना पर्याप्त नहीं होती। विद्यार्थी को उपलब्ध होस्टों की संख्या, नेटवर्क पता, ब्रॉडकास्ट पता, उपयोग योग्य पता सीमा और गेटवे की भूमिका निकालनी आनी चाहिए। CCNA तैयारी में यही गणित रूट समरीकरण, ACL नियमों और समस्या निवारण तक पहुंचता है। अतः शुरुआती गाइड की उपयोगिता तब बढ़ती है जब वह एड्रेसिंग को अमूर्त अंकगणित के बजाय वास्तविक नेटवर्क विभाजन के निर्णय से जोड़ती है। तीसरा, स्विचिंग, VLAN और रूटिंग से स्थानीय नेटवर्क को परस्पर जोड़ना। नेटवर्किंग की दूसरी प्रमुख परत यह समझना है कि लोकल एरिया नेटवर्क के भीतर ट्रैफिक कैसे नियंत्रित होता है और फिर दूसरे नेटवर्क तक कैसे पहुंचता है। स्विच मेक एड्रेस के आधार पर फ्रेम को उचित पोर्ट तक भेजने का निर्णय सीखता है। यह स्थानीय संचार को कुशल बनाता है, पर हर स्विच पोर्ट को एक ही प्रसारण क्षेत्र में रखना बड़े नेटवर्क के लिए उपयुक्त नहीं होता। VLAN इसी समस्या का तार्किक समाधान है। यह एक ही भौतिक स्विच अवसन रचना पर अलग अलग नेटवर्क समूह बनाने देता है। ट्रंक लिंक, कई VLAN का ट्रैफिक एक लिंक पर ले जा सकता है, जबकि इंटर VLAN रूटिंग इन समूहों के बीच नियंत्रित संचार उपलब्ध कराती है। इसके साथ स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का सिद्धांत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परत दो में अतिरिक्त लिंक लूप और अनियंत्रित प्रसारण पैदा कर सकते हैं। रूटिंग में राउटर अपनी रूटिंग टेबल के आधार पर अगला हॉप चुनता है। स्टैटिक रूट छोटे और स्थिर परिवेश में स्पष्ट नियंत्रण देते हैं, जबकि डायनेमिक रूटिंग प्रोटोकॉल बड़े या बदलते नेटवर्क में मार्ग सूचना साझा करने में मदद करते हैं। शुरुआती स्तर पर मुख्य बात हर कमांड याद करना नहीं, बल्कि यह समझना है कि VLAN अलगाव, परत दो लूप रोकना और परत तीन मार्ग चयन अलग समस्याओं के समाधान है। यह भेद कॉन्फ़िगरेशन और ट्रबल शूटिंग दोनों को अधिक सटीक बनाता है। चौथा, नेटवर्क सेवाओं और सुरक्षा नियंत्रणों को पहुंच तथा जोखिम के संतुलन के रूप में देखना। CCNA के आरंभिक दायरे में नेटवर्क को केवल जोड़ना पर्याप्त नहीं है, उसे उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध रखते हुए अनधिकृत पहुंच और अनावश्यक ट्रैफिक से बचाना भी आवश्यक है। DHCP जैसी सेवा उपकरणों को IP पता, मास्क, गेटवे और अन्य आवश्यक जानकारी स्वचालित रूप से दे सकती है। DNS नाम को IP पते में बदलने की सुविधा देता है। NAT निजी एड्रेसिंग वाले उपकरणों को सार्वजनिक नेटवर्क से संवाद कराने में उपयोगी है। ये सेवाएं दैनिक संचालन को सरल करती हैं, लेकिन गलत कॉन्फ़िगरेशन होने पर उपयोगकर्ता की पहुंच पूरी तरह रुक सकती है। सुरक्षा की बुनियाद में ACL जैसे नियम आते हैं, जिनसे स्रोत, गंतव्य, प्रोटोकॉल या पोर्ट के आधार पर ट्रैफिक को अनुमति या निषेध दिया जा सकता है। यहाँ नियमों का क्रम महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि व्यापक नियम किसी जरूरी विशिष्ट नियम को निष्प्रभावी बना सकता है। स्विच पोर्ट सुरक्षा, अलग VLAN, सुरक्षित प्रशासनिक पहुंच और वायरलेस सुरक्षा भी इसी सिद्धांत के विस्तार हैं। उद्देश्य हर ट्रैफिक रोकना नहीं, बल्कि न्यूनतम आवश्यक पहुंच देना है। एक शुरुआती पुस्तक के संदर्भ में इस क्षेत्र का मूल्य यह है कि पाठक सुरक्षा को अलग विशेषज्ञता समझने के बजाय नेटवर्क डिजाइन का अनिवार्य हिस्सा समझे। सही एड्रेसिंग, स्पष्ट सेगमेंटेशन और सोच समझकर बने नियम समस्या कम करने के साथ जवाबदेही भी बेहतर करते हैं। अंत में प्रमाणन तैयारी में सिद्धांत, कॉन्फ़िगरेशन और समस्या निवारण का संयोजन। CCNA जैसे प्रमाणन के लिए केवल शब्दावली याद करना सीमित लाभ देता है। परीक्षा और वास्तविक कार्य दोनों में विद्यार्थी को किसी नेटवर्क स्थिति को पढ़ना, संभावित कारण अलग करना और उचित समाधान चुनना होता है। इसलिए शुरुआती मार्गदर्शिका की सबसे व्यावहारिक भूमिका अध्ययन को क्रम देने में है। पहले नेटवर्क मॉडल, ईथरनेट और एड्रेसिंग समझी जाए, फिर स्विचिंग और रूटिंग के निर्णय, उसके बाद सेवाएं, सुरक्षा तथा आधुनिक नेटवर्क प्रबंधन की बुनियाद। प्रत्येक अवधारणा के बाद छोटा प्रयोग उपयोगी रहता है। उदाहरण के लिए दो सबनेट बनाना, उनके लिए गेटवे कॉन्फ़िगर करना, फिर कनेक्टिविटी जांचना। यह दिखाता है कि गलत मास्क, बंद इंटरफेस और अनुपस्थित रूट के परिणाम अलग होते हैं। समस्या निवारण में परत आधारित दृष्टि समय बचाती है। पहले भौतिक कनेक्शन और इंटरफेस स्थिति, फिर VLAN या एड्रेसिंग, फिर गेटवे और रूट, और अंत में नीति या सेवा की जांच की जा सकती है। वर्तमान CCNA दायरे में ऑटोमेशन और प्रोग्रामेबिलिटी की बुनियादी समझ भी प्रासंगिक है, क्योंकि नेटवर्क उपकरणों का प्रबंधन केवल मैनुअल कमांड तक सीमित नहीं रहा। फिर भी शुरुआती पाठक के लिए प्राथमिकता मूल नेटवर्क व्यवहार को समझना है। कॉन्सेप्ट, लैब अभ्यास और त्रुटि विश्लेषण का यह संयोजन किसी भी परीक्षा केंद्रित सामग्री को वास्तविक कौशल में बदलने का विश्वसनीय तरीका है। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उन पाठकों के लिए सबसे उपयुक्त दिखती है जो नेटवर्किंग में बिल्कुल नए हैं, IT सपोर्ट से नेटवर्क प्रशासन की ओर बढ़ना चाहते हैं, या सिस्को CCNA प्रमाणन के मूल विषयों का सरल प्रारंभिक परिचय चाहते हैं। इसका संभावित व्यावहारिक लाभ यह है कि पाठक नेटवर्क को अलग अलग असंबद्ध तकनीकी शब्दों के संग्रह के रूप में देखने के बजाय एक कार्यशील प्रणाली की तरह समझना शुरू कर सकता है। IP, पता, सबनेट, स्विच, राउटर, VLAN, ACL और नेटवर्क सेवाएं तब अधिक अर्थपूर्ण बनती हैं जब उनके बीच डेटा प्रवाह और नियंत्रण का संबंध स्पष्ट हो। इसी समझ के आधार पर लैब अभ्यास, अधिक विस्तृत अध्ययन सामग्री और आधिकारिक परीक्षा उद्देश्यों का अध्ययन प्रभावी होता है। समान श्रेणी की भारी संदर्भ पुस्तकों की तुलना में इसका प्रमुख अंतर इसका शुरुआती पाठक केंद्रित स्थान है। अल्टीमेट बिगिनर्स गाइड का संकेत एक ऐसे प्रवेश स्तर के संसाधन की ओर है जो पहले अवधारणात्मक बाधा कम करना चाहता है, न कि तुरंत अत्यधिक विस्तृत कॉन्फ़िगरेशन या उन्नत डिजाइन में उतरना। हालांकि गंभीर परीक्षा तैयारी के लिए पाठक को वर्तमान आधिकारिक CCNA परीक्षा रूपरेखा, हैंड्स ऑन लैब और नवीनतम सिस्को दस्तावेजों के साथ इसकी सामग्री की तुलना करनी चाहिए। प्रमाणन उद्देश्य समय के साथ बदलते रहते हैं, इसलिए इस पुस्तक को आधारभूत अध्ययन साथी मानना अधिक यथार्थवादी है, जबकि गहरी कमांड प्रैक्टिस, प्रश्न, अभ्यास और आधुनिक ऑटोमेशन विषयों के लिए अतिरिक्त स्रोत जोड़े जाने चाहिए। इस संतुलन के साथ यह नेटवर्किंग की भाषा और उसके मूल तर्क में प्रवेश करने वाले विद्यार्थी के लिए उपयोगी आरंभ हो सकती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं, माई छायल कॉनरेडी, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।